بحکم احادیث ایمان یہ ہے کہ ہو سب سے بڑھ کر محبت نبی کی۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو، تمہارا درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج درس سیاہ ستہ میں جس حدیث مبارکہ کا انتخاب کیا ہے وہ مسلم شریف کی روایت جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا تبدأ العبد المسلم ابی المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطیئة نظر الیہا بعینه مع الماء او مع آخر قطر الماء۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان یا مومن بندہ جب وضو کرتا ہے اور وضو کرنے میں جب وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے ہر وہ خطا، ہر وہ گناہ نکل جاتا ہے جس خطا اور گناہ کی طرف اس نے اپنی آنکھوں کے ذریعے نظر کی تھی۔ کس طرح نکل جاتا ہے؟ اس وضو کے پانی کے ساتھ وہ گناہ بھی اس کے چہرے سے اتر جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، نکل جاتا ہے۔ یا فرمایا کہ پانی کا وہ جو آخری قطرہ ہوگا جب وہ اس کے چہرے سے گرے گا، نکلے گا، تو اس کے خطائیں بھی چہرے والی وہ دور ہو جائیں گے۔ مزید فرمایا فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَّتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَائِ اَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ۔ کہ جب آدمی وضو کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دھو رہا ہوتا ہے تو اس کے دونوں ہاتھوں سے ہر وہ خطا اور گناہ نکل جاتا ہے جن گناہوں کو اس کے دونوں ہاتھوں نے کیا تھا، یعنی جن گناہ والی چیزوں کو اس کے ہاتھوں نے پکڑا تھا تو وہ خطا بھی اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے پانی کے ذریعے سے، یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں کے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ پھر مزید آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، جب وہ وضو کرتے ہوئے اپنے پاؤں کو دھو لیتا ہے، خرجت کلو خطیئت مشت ہا رجلا و مع الماء او مع آخر قطر الماء حتی یفرج نقیا من الذنوب۔ فرمایا کہ جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں سے وہ ساری خطائیں نکل جاتی ہیں جن خطاؤں کو کرنے کے لیے اس کے قدم چلے تھے، تو وہ خطائیں بھی نکل جاتی ہیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ یہاں تک کہ جب بندہ وضو مکمل کر لیتا ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حتی یخرج نقیا من الذنوب، تو آدمی وضو کرنے کے بعد گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے مسلم شریف کی اس حدیث مبارکہ سے ہمیں گناہ دھونے کا نسخہ حاصل ہو گیا۔ جس طرح ہمارے جسم پر میل کچیل لگ جاتا ہے، کپڑوں پر میل کچیل لگ جاتا ہے، ہمارے استعمال میں آنے والی اشیاء کو میل کچیل لگ جاتا ہے، تو ہم جس طرح ان کی صفائی सुथराई का एहतमाम करते हैं, तो इसी तरीके से जिसमें इंसानी गुनाह के ज़रिए से वो भी आलूदा हो जाता है। तो अब गुनाहों की कालक, गुनाहों की स्याही अपनी बॉडी से, अपने जिस्म से, अपने जाहिर से, अपने बातिन से, हम किस तरह से गुनाहों की स्याही और कालक को दूर कर सकते हैं? तो हमारे आका व मौला सैयदुना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गुनाहों की स्याही को दूर करने का हमें एक बहुत ही प्यारा तरीका इरशाद फरमाया, और गैब की खबर देते हुए हमें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह आगाह फरमा दिया कि जब बंदा मोमिन वुजू कर रहा होता है, चेहरा धो रहा होता है, तो चेहरे के ज़रिए होने वाले जो गुनाह हैं वो उसके धुल रहे होते हैं, चेहरे के साथ साथ वो गुनाह उसका निकल जाता है, ख़त्म हो जाता है। हाथ धोने से हाथ के गुनाह ख़त्म हो जाते हैं, पांव धोने से पांव के गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें हमारे नाम अमाल को गुनाहों से साफ रखने का एक बहुत ही प्यारा तरीका, एक बहुत ही प्यारा नुस्खा अता फरमा दिया, वुजू की सूरत। तो जब बंदा मोमिन वुजू करता है तो वो अपने आप को गुनाहों से पाक और साफ कर रहा होता है। अल्लामा अबू जकरिया यहया बिन शरफ नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस मुबारका की शरह करते हुए इशाद फरमाते हैं कि ये जो वुजू करने के ज़रिए से खताओं का निकल जाना, खताओं का मिट जाना, ये हदीस मुबारका में जो बयान किया गया, इससे मुराद सगीरा गुनाह हैं, कबीरा गुनाह नहीं है। और एक और हदीस मुबारका जिसमें फरमाया गया कि उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं जब तक के कबीरा गुनाह का मुर्तकिब ना हो। तो यह हदीस मुबारका से ये बात मालूम होती है कि यहाँ आदमी के जो गुनाह बख्शे जा रहे होते हैं वो सगीरा गुनाह हैं। और काजी इयाज़ मालिकी रहमतुल्लाह ताला अलैह मज़ीद फरमाते हैं कि ये जो गुनाह झड़ने का हदीस मुबारका में फरमाया गया कि गुनाह निकल जाते हैं, तो गुनाह झड़ने से मुराद गुनाहों का मुआफ़ होना है, कि गुनाह कोई जिस्म नहीं रखते। जैसे हमारे हाथ पर कोई कालक लग जाए, कोई मेल लग जाए, कोई चीज़ लग जाती है तो हम उसको छुड़ाते हैं, साफ़ करते हैं। तो गुनाह कोई ऐसा जिस्म नहीं रखता कि जिसको धोने से वो निकल जाता है। यहाँ पर गुनाह के निकल जाने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। इस हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तीन आज़ा का धोने का जिक्र फरमाया, जिसमें चेहरा है, दोनों हाथ हैं, इसी तरीके से पांव हैं, और इनके ज़रिए गुनाहों के मुआफ़ी, कि जब वजू में इन आज़ा को धोया जाएगा तो गुनाह झड़ रहे होते हैं, मुआफ़ हो रहे होते हैं। एक हदीस मुबारक जिसे इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी मुवत्ता में जिक्र फरमाया है, उसके अंदर मज़ीद और वजाहत भी है कि कुल्ली करते वक्त, जब हम कुल्ली कर रहे होते हैं तो कुल्ली करते वक्त मुँह से गुनाह निकल जाएंगे। नाक में पानी जब चढ़ाया जाता है तो नाक से किए जाने वाले, नाक से होने वाले गुनाह वो निकल जाते हैं। चेहरा धोते वक्त चेहरे के गुनाह निकल जाते हैं। तो जिनकी तरफ आँख से देखा गया था, यानी गुनाहों वाली चीज़ें आदमी देखता है, तो इस गुनाह में जो आँख मुलव्वस हुई, ये चेहरे का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, तो यहाँ तक के पलकों के नीचे भी, यानी हमारी आँख जब उठी तो ये पलकें भी इसमें मुआविन साबित हुई। तो जो जो हमारा पार्ट ऑफ बॉडी गुनाह के अंदर मुब्तला होता रहा, आज़ाए वुजू पर जब पानी पड़ेगा तो उसके गुनाह मुआफ़ हो रहे होते हैं। तो हाथ धोते वक्त हाथ के साथ साथ नाखूनों के नीचे के भी गुनाह निकल जाएंगे, और सर का मसह करते वक्त सर के गुनाह भी निकल जाएंगे। यहाँ तक कि कानों से भी, जहाँ मसह कर रहे होते हैं तो कानों से होने वाले गुनाह वो भी निकल जाएंगे, और पांव धोते वक्त पांव के साथ साथ पांव के नाखूनों के गुनाह भी निकल जाएंगे। जब हाथ गुनाह करते हैं तो हाथ में नाखून भी हैं, नाखून के नीचे की जो खाल है वो भी उस गुनाह के अंदर शरीक होती है। जब हम चल रहे होते हैं किसी गुनाह की तरफ, अगर कोई इंसान जाएगा तो इस कदमों के साथ साथ पांव के नाखून भी गुनाह की तरफ जा रहे हैं, पांव के नीचे की जो खाल है वो भी गुनाह की तरफ मुआविन मददगार बन रही है। जब हम वजू कर लेते हैं, हाथ धो लेते हैं, पांव धो लेते हैं, अलगरज जिस तरह हमें शरीयत मुतारा ने वजू करने की तालीम इरशाद फरमाई है, उस अंदाज में जब हम वजू कर लेते हैं तो हमारे जिस्म से गुनाह झड़ना शुरू हो जाते हैं, दूर होना शुरू हो जाते हैं। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि इबन मलिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वजू करने वाला वजू करते ही उन गुनाहों से पाक हो जाता है जो आज़ाए वजू के ज़रिए किए गए थे। कितनी बड़ी बरकतें हैं कि एक बंदे के नामे आमाल में गुनाह 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 लिखे जा रहे हैं, उसके हाथ, उसकी आँखें, उसका चेहरा, उसके कदम मुख्तलिफ किस्म के गुनाहों के अंदर मुब्तला हैं और गुनाहों का एक बोझ उसके ऊपर चढ़ता जा रहा है। तो वुजू करने की बरकत है कि अल्लाह तबारक व तआला सगीरा गुनाहों की माफ़ी फरमाता रहता है। इसको मदनी चैनल के नाज़रीन इस अंदाज से भी लें कि एक आदमी मेला कुचेला होता जा रहा है, धूल मट्टी पसीना गर्द गुबार उसके जिस्म पर आकर लगता है जिससे मेल बनता है, कपड़े ख़राब हो रहे हों, बॉडी ख़राब हो रही हो, जिस्म से बू आना शुरू हो जाए, तो अगर कुछ वक्त तक आदमी अपने बॉडी को अपने जिस्म को अगर होएगा नहीं, गुसल नहीं करेगा, तो आदमी मेला कुचेला होकर खुद उसको भी बदबू आने लगती है और उसके अतराफ में जो बैठने वाले होते हैं, जिनके सामने से वो गुजरता है, उनको भी बदबू का एक भपका ज़रूर आता है। तो जिस तरह हम अपने जिस्म की सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं और अपने जिस्म को साफ सुथरा रखते हैं, तो इसी तरह हम अपने बातिन की भी सफाई करें, हम अपने नामे आमाल की तरफ भी तवज्जो रखें और नामे आमाल में जो हमारे आज़ाए जिस्म से होने वाले गुनाह दर्ज होते चले जा रहे हैं उनकी मुआफ़ी का भी सामान करें। और हर नमाज के लिए हम अगर वुजू करते हैं तो इस वुजू की बरकत से हमारे गुनाह ये झड़ना शुरू हो जाते हैं। एक और हदीस मुबारक जिसमें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया है कि जब आदमी अच्छी तरीके से वुजू करता है तो उसके सारे जिस्म के गुनाह निकल जाते हैं, हत्ता के नाखूनों के नीचे से भी गुनाह निकल जाते हैं। तो ये जो पूरे जिस्म से गुनाह निकल जाने वाली रिवायत है शारहीन हदीस ने, इस रिवायत के बारे में और जो रिवायत अभी हमने सुनी कि जब बंदा वुजू करता है तो चेहरे और हाथ और गुनाह और पाँवों के गुनाह वो निकल जाते हैं, और एक हदीस मुबारक जो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिसमें पूरे जिस्म के गुनाह निकल जाने का जिक्र है, तो इन दोनों हदीस मुबारक में तदबीक यूँ दी है कि जो बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ कर वुजू करेगा तो आज़ाए वुजू के साथ साथ उसके पूरे बदन के गुनाह धुल जाएंगे, निकल जाएंगे, और अगर बिस्मिल्लाह पढ़े बग़ैर वो वुजू करता है तो जितने आज़ा को उसने वुजू में धोया है सिर्फ उन्हीं के गुनाह वो निकलेंगे। चेहरे के आज़ा में आँखों का बिलखसूस जिक्र फरमाया है, मुंह का, दांतों का, जबान का, कान का, इसके बजाय आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आँखों का बिलखसूस जो जिक्र फरमाया, तो शारहीन हदीस ने इसकी चंद एक वजूहात इरशाद फरमाई हैं। तो इसकी एक वजह तो ये है कि आँख दिल की जासूस और रहनुमा है, आँखें गुनाह की तरफ जब नज़र डालेंगी तो दिल के अंदर गुनाह की तरफ ख्याल को पैदा करेंगे, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आँखों का जिक्र फरमाया, यानी गुनाह करने में सबसे पहला जो नंबर है वो आँखों का होता है कि इन आँखों के ज़रिए गुनाह की तरफ आदमी जब नज़र डालता है दिल में ख्वाहिश पैदा होने लगती है और इसके बाद ये पूरा जिस्म उस गुनाह की तकमील के लिए, उस दिली ख्वाहिश को पूरा करने के लिए पूरी बॉडी इस्तेमाल में आती है, तो गुनाह करने में जो जासूसी जिसने की थी वो नज़र थी, यानी गुनाह करने में सबसे पहला उजून जो इस्तेमाल हुआ वो आँख। तो जब बंदा चेहरा धो रहा होता है तो इब्तिदा गुनाह की जिस वजू से हुई यानी आँखें, उसके गुनाह भी अल्लाह तबारक व ताला माफ़ फरमा देता है, तो इसके साथ साथ बकिया आज़ाए जिस्मानी के भी अल्लाह तबारक व ताला गुनाह माफ़ फरमाएगा। एक और वजह ये भी शारहीन हदीस ने आँख का जिक्र करने की ये इरशाद फरमाई कि किसी को ये वहम हो सकता था کہ جب چہرہ دھویا جا رہا ہوتا ہے تو چہرہ دھونے کے وقت آنکھوں کا دھونا یہ فرض نہیں ہے. جب آنکھ کے اندرونی حصے میں پانی ڈالنا ضروری نہیں ہے تو آنکھوں کا گناہ کیسے معاف ہوگا؟ تو اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وہم کا بھی ازالہ فرما دیا اور آنکھ کے گناہ کا بالخصوص ذکر فرما کر اس طرف رہنمائی فرما دی کہ اگرچہ آنکھوں کا دھونا ضروری نہیں ہے لیکن یہ چہرے کے اعضاء میں سے ایک عضو ہے, تو جب چہرے کے گناہ دھل رہے ہیں تو اس چہرے میں پائے جانے والا جو عضو آنکھ ہے جس کا دھونا فرض نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. دلیل الصالحین میں ہے کہ وضو کی وجہ سے اعضاء وضو کے گناہ نکل جاتے ہیں, یعنی وہ صغیرہ گناہ نکل جاتے ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے, یعنی آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق نہیں ادا کیے, جن گناہوں کا تعلق صغیرہ گناہوں کا حقوق اللہ سے ہے, تو وہ گناہ اس حدیث مبارکہ میں متنا شارحین حدیث نے ارشاد فرمایا ہے. اور یہ عبارت بطور استعارہ استعمال کی گئی ہے. گناہ نکلنے سے جو مقصود ہے وہ گناہوں کو مٹانا اور ختم کرنا ہے, ورنہ گناہ کوئی جسم نہیں رکھتے کہ کوئی جسم سے وہ گناہ نکل نکل کے باہر جا رہے ہوں. تو بعض شارحین حدیث نے یہ بھی ارشاد فرمایا, اور جبکہ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں گناہ نکلنے کا جو ذکر فرمایا گیا اس کو گناہ مٹانے کے بجائے اگر ہم اس کے حقیقی معنی پر ہی اس کو رکھیں کہ جس طرح پانی جسم سے میل کو دور کر رہا ہوتا ہے, نکال رہا ہوتا ہے, تو اسی طریقے سے گناہ بھی باقاعدہ نکل رہے ہوتے ہیں. ایک تو معاف کرنا وہ معنی بھی ہے, اور ایک معنی علامہ ابن العربی فرماتے ہیں کہ گناہ نکلنے کا معنی یہی لیا جائے جو الفاظ حدیث ہیں کہ گناہ نکلتے ہیں تو بھی یہ معنی درست قرار پائے گا, کیونکہ گناہ ظاہر اور باطن کو سیاہ کرنے میں اثر رکھتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو اصحاب کشف اور احوال ہوتے ہیں وہ ان گناہوں کی سیاہی اور کالک پر بھی مطلع ہو جاتے ہیں, اور وضو کا جو اثر ہے وہ ان گناہوں کو بھی, اس کی کالک اور سیاہی کو بھی بندے سے دور کر رہا ہوتا ہے. علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس بات پر وہ استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حجر اسود جب آسمان سے آیا تھا, جنت سے آیا تھا, تو بہت چمکدار اور روشن تھا. مشرکین کے گناہوں کے اثر کی وجہ سے, وہ بھی چونکہ حجر اسود کو چوما کرتے تھے, ہاتھ لگاتے تھے, تو اس وجہ سے حجر اسود کا رنگ سفید سے سیاہ کی طرف مائل ہو گیا. تو جب گناہوں کا اثر حجر اسود کو, جو کہ حجر ابیض تھا, سفید تھا, اس حجر ابیض کو حجر اسود بنا سکتا ہے, یعنی سیاہ کر سکتا ہے, تو گناہ کرنے والے شخص پر بھی ان گناہوں کا اثر پڑتا ہے. جب حجر اسود اس پر اثر پڑ گیا گناہوں کا کہ اس کا کلر چینج ہو گیا, تو اسی طریقے سے جو خود گناہ کرنے والا ہے اس کے گناہوں کا اثر بھی اس کے جسم پر پڑتا ہے. تو یا پھر گناہ نکلنے سے مراد یہ ہے کہ ان گناہوں کی سیاہی نکل جائے گی. گناہ جھڑنے کے حوالے سے ایک بہت ہی پیاری حکایت جس میں گناہ جھڑنے کا ذکر بھی موجود ہے, اور اللہ والوں نے ان گناہوں کو وضو کرنے والے کے جسم سے نکلتے ہوئے بھی دیکھا ہے. جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ زہر کے پردے ہٹا دے تو انہیں باقاعدہ وضو کرنے والے کے جسم سے گناہوں کا نکلنا بھی نظر آتا ہے. میزان الکبریٰ کے اندر ایک ایمان افروز حکایت نقل کی گئی ہے. علامہ عبد الوہاب شاعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سید الامام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے پر ایک نوجوان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ اے بیٹا, ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لے. تو اس نے کہا, حضور, میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کرتا ہوں. اسی طرح آپ نے وضو کرنے والے ایک شخص کو دیکھا कि वो जो वुजू कर रहा था और उसके आज़ाए वुजू से पानी टपक रहे थे, तो आपने फरमाया कि ए मेरे भाई बदकारी से बाज आ, तोबा कर दे। तो उसने भी अर्ज़ की कि मैं अल्लाह ताला की बारगाह में सच्ची तोबा कर। इसी तरह एक शख्स पे आज़ाए वुजू से कतरे टपक रहे थे, तो हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उससे फरमाया कि शराब नोशी और गाने बाजे सुनने से तोबा कर ले। इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आपके ज़रिए से अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में उसने तोबा तायब हुआ। तो अब ये गुनाह जो वजू करने वाला वजू कर रहा है, तो किसी के वजू करने से वो अपने माँ बाप की नाफरमानी कर रहा था, ये नाफरमानी का गुनाह वो छड़ता हुआ महसूस हुआ, तो कोई बदकारी में मुबतला है, तो वो बदकारी की कालत भी कुछ आज़ाए वुजू से झड़ने लग गई, तो कोई शराब नोशी गाने बाजे में मुलव्वस रहता था, तो आज़ाए वुजू से निकलने वाले कतरों में उन गुनाहों की भी स्याही निकल रही थी। तो इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन पर अल्लाह तबारक व ताला की करोड़ा रहमतें हों, आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने वो वुजू के कतरों में वो गुनाहों के आसार नज़र आ रहे थे। तो अल्लाह तबारक व ताला हमारे इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह पे करोड़ा रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आपने अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ की कि या अल्लाह ये जो कश्फ मुझे हो रहा है और लोग वुजू कर रहे हैं और इनके आज़ाए वुजू से जो गुनाह झड़ रहे हैं ये मुझे गुनाह नज़र आ रहे हैं, या अल्लाह ये कश्फ मुझसे वापस ले ले। चुनाचे आपकी दुआ कबूल हुई और फिर आपको वुजू करने वाले के गुना झड़ते नजर आना बंद हो गए। आदमी जब वुजू करता है तो उसके आज़ाए वुजू से गुनाहों का झड़ने का अमल शुरू हो जाता है, और दिलो दिमाग भी गुनाह करते हैं, बुरे ख्यालात जहन में, बुरे कामों की प्लानिंग दिल में, बुरे कामों के करने का अज़्म जब आदमी कर लेता है तो ये भी गुनाह का काम है। तो आदमी को चाहिए कि जब वुजू करे बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहके वुजू करेगा तो अल्लाह तबारक व ताला इसके गुनाहों को भी मुआफ़ फरमा देगा। मज़ीद आखिर में वुजू के हवाले से चंद एक फजीलतें सुनते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस उम्मत को जो वुजू की नेमत अता फरमाई है ये कितनी प्यारी नेमत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के दिन मेरी उम्मत इस हालत में बुलाई जाएगी कि इनके मुंह, इनके हाथ, इनके पांव आसार वुजू की वजह से चमकते होंगे, तो जो चमक ज़्यादा करना चाहे उसे चाहिए कि वुजू करे। तो बंदे को चाहिए कि वुजू करके अपने आज़ाए वुजू को चमकदार बना ले। बावुजू जो अशखास होते होंगे वो क़यामत के दिन उनके आज़ाए वुजू के आसार चमक रहे होंगे। एक और रिवायत में आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुसलमान वुजू करे, अच्छा वुजू करे, फिर खड़ा हो और बातिन और ज़ाहिर से मुतवज्जे होकर दो रकअत अगर नमाज पढ़ ले उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाते। तो हम कितने प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं कि इनके उम्मती होने का हमें कितना बेनिफिट है कि हम अगर वुजू करके नमाज पढ़ते हैं तो नमाज अच्छे तरीके से पढ़ने वाले शख्स के लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। और एक और हदीस मुबारक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स वुजू पर वुजू करे, यानी पहले से वो उसका वुजू है और उससे नमाज़ पढ़ ली, जैसे जोहर का वुजू किया था, जोहर की नमाज़ पढ़ ली, अभी तक वुजू कायम है और असर की नमाज का वक्त आ गया, तो इस तरह के मौके पर अब दोबारा वुजू करना मुस्तहब है। तो इस वुजू अलल वुजू की बरकत हदीस मुबारक में फरमाई गई कि जो शख्स वुजू पर वुजू करे उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अच्छे अंदाज में सुन्नत के मुताबिक वुजू करने की तौफीक अता फरमाए और इस वुजू की बरकत से हमारे गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला हमारे नामे अमाल से मिटा दे और हमें खूब कसरत के साथ नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।
बहुक्म अहदीस ईमान ये है कि हो सब से बढ़कर मोहब्बत नबी की।